मधुबन जाके आते 24 घंटे में एक बार रोज मधुबन की यात्रा करनी। एक है शरीर से जाना और एक है मन से जाना, और मन से जाना शरीर के जाने से 10 गुना अधिक शक्तिशाली। शरीर यहां रह जाए और मन चार धाम की यात्रा करके आ जाए, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया, इन स्थानों पर जाए और वहां पर ऐसा अनुभव करे कि जैसे हम वास्तव में वहां हैं। क्योंकि मधुबन एक ऐसा स्थान है, जब से यज्ञ वहां आया 5th May 1950, दो तीन स्थान बदले, परंतु वर्तमान जो पांडव भवन है वहां पर ऐसा कोई भी एक घंटा नहीं कि जहां कोई योग नहीं कर रहा है। सुबह 2 बजे से योग करना चालू हो जाता है, दिन भर पार्टी आती रहती है, रात में सिक्योरिटी वाले हैं, कोई ना कोई हमेशा बाबा के कमरे में बैठा ही है। इसलिए वो स्थान बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, और जिस भी स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन किया जाता है, स्वतः ही उस स्थान के, उस व्यक्ति के, उस वस्तु के वाइब्रेशंस आने लगते। यहां बैठे बैठे यदि कोई माता अपने बेटे को याद करे जो कि बहुत दूर है, अभी मिली नहीं है, केवल याद किया है, अपने आप आंखों से आंसू, जबकि वो यहां है ही नहीं, स्मृति तुरंत स्वरूप। जैसे ही स्मृति वैसा ही स्वरूप। यदि स्मृति को यदि सीधा ऐसे स्थान पर या उस पर टिकाया जाए तो सागर है, उसके सारे गुण इधर आने लगे। अगर तपस्या भूमि पर एकाग्र किया जाए मन को, तो वहां के सारे वाइब्रेशंस इधर आने लगेंगे। यदि उस पवित्रता के सागर पर मन एकाग्र हो जाए तो उसके प्रकंपन हम तक पहुंचने लगेंगे। ये अभ्यास रोज करना है। अगले दो दिन में बहुत सारे अभ्यास हम बताएंगे, उनकी चर्चा होगी, जिनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। तो सबसे पहला अभ्यास है अपने मन को मधुबन ले जाना। एक तो अमृत वेला, 24 घंटे में एक बार अगर हो सके तो दिनचर्या में कई बार। तो आज अब पहला विषय जिससे हम भट्टी की शुरुआत करेंगे वो है अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक व्यक्ति था जो कि संसार में इतना डूबा हुआ था कि केवल संसार का चिंतन, परिवार का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन, पद पोजीशन, पद प्रतिष्ठा का चिंतन और केवल संसार की दौड़ में इतना भाग रहा था कि उसे खबर ही नहीं कि और भी एक दुनिया है, उसे खबर ही नहीं कि और भी एक अनंत की प्यास है, पुकार है, उससे दूर है अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत बड़ा व्यापारी था और एक बार उसका एक मित्र उसके पास आया और उसके मित्र ने देखा कि कैसा विस्तार किया है और कैसे थाट पाट है और उस मित्र ने कहा, कभी भगवान की भी सोची है? उस मित्र ने कहा, कभी तीर्थ यात्रा भी की है? उसने कहा कि मेरे पास कोई समय नहीं है इस सब चीजें करने के लिए। परंतु मित्र बहुत प्यारा था, पुराना था और मित्र ने कहा कि तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो। और बहुत मुश्किल से वो व्यापारी मान गया उस व्यक्ति के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए। यात्रा चालू हुई, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए, कई नदियों का पवित्र स्थान स्नान किया, परंतु वो मित्र देखता है कि इस व्यापारी मित्र में कोई परिवर्तन नहीं, यहां रहते हुए भी सारा चिंतन उधर का ही चालू है, प्रवचनों में, सत्संगों में, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स कई जगह उसको ले गया, परंतु कोई परिवर्तन नहीं। ऊपर से ऐसा ही दिख रहा है कि ये मित्र अभी भी संसारिकता में और संसार के ही चिंतन में लगा हुआ है। और अंततः वो मित्र सोचता है कि क्यों ना मैं इसे कुछ दूसरे स्थान पर ले जाऊं, और वो उसे शमशान घाट में ले जाता है। एक बहुत बड़ा शमशान घाट जहां पर बहुत सारी चिताएं जल रही है। शायद हो सकता है ये दृश्य देखकर कुछ वैराग जागे, संसार की अनित्यता का ज्ञान हो। और जैसे ही वो व्यापारी मित्र वहां पहुंचता है और वो सारा दृश्य देखता है, इतनी चिताएं जल रही है, उदास सा हो जाता है। ये दृश्य देखकर ये जो दूसरा मित्र है उसको लगता है शायद तीर लग रहा है, धधकती हुई अग्नि, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। और वो व्यापारी एकदम खिन्न, दुखी, उदास एक कोने में जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। इस मित्र को लगता है शायद हो सकता है कुछ इस संसार का बोध हो रहा है। और वो उससे पूछता है, क्या हुआ, कुछ बताओ। वो व्यापारी मित्र कहता है, इतनी सारी चिताएं जलते हुए देखकर आज मुझे पश्चाताप हो रहा है और दुख हो रहा है। मैंने कपड़ों का व्यापार क्यों किया? लकड़ी का अगर करता तो आज कितना बड़ा व्यापारी होता, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। पहले क्यों नहीं तुम मुझे यहां ले आए? यह मनुष्य की कहानी है। जो व्यक्ति लंबा समय जिसका चिंतन में रहता है वही उसकी दृष्टि और वृत्ति हो जाती है। जो संसार के चिंतन में जीवन भर रहा उसे संसार ही दिखाई देता है। दो मार्ग है इस जीवन के, एक संसार का मार्ग, एक अध्यात्म का मार्ग, और दोनों ही मार्ग में बहुत जलना है। ऐसा नहीं कि कोई अध्यात्म के मार्ग पर चालू हो जाए जलना तो यहां पर यातनाएं, पीड़ा, दर्द, हिसाब किताब नहीं है। इधर भी आग है और उधर भी आग, दोनों तरफ आग है, परंतु एक मूलभूत अंतर है। जो व्यक्ति केवल संसारिक चिंतन में रहता है और केवल संसारिक मार्ग में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ते 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 एक ऐसा समय आता है कि वो राख बन जाता है जल जल के। अध्यात्म में भी व्यक्ति बहुत चलता है, यहां पर भी हिसाब किताब है, यहां भी आत्माओं के साथ संपर्क है, यहां पर भी शारीरिक पीड़ा है, व्याधि है, आर्थिक संघर्ष है, परंतु फिर भी व्यक्ति उस अदृश्य शक्ति के साथ चलता है। संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए एक अद्भुत शक्ति उसके साथ चलती है और यहां पर भी चलते 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 जलना दोनों तरफ है। वहां व्यक्ति राख बन जाता है, यहां एक दिन वही व्यक्ति हीरा बन जाता है, जो कि सारे विश्व को प्रकाशित करता है अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। ये जीवन केवल भोग और विलास के लिए नहीं, ये शरीर जो प्राप्त है बड़े भाग मानुष तन पावा, इस शरीर में बैठकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असंख्य आत्माओं की सेवा करनी है और इस शरीर को तपाना है ताकि इसमें बैठी जो आत्मा है वो तपस्वी बन जाए। और आत्मा की मूल प्यास सुख की, और आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। इस संसार का कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई वैभव इस आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। भ्रम होगा कि कुछ रही है, संसार में भी असंख्य सुख है पर वो अल्पकालीन है, डिसेप्टिव है, धोखेदायक देने वाले, भ्रामक है, इल्यूजरी और काल्पनिक है, कल्पना में है, इमेजिनरी। जब तक आत्मा स्वयं के स्वरूप में नहीं टिकती उसको सुख मिल नहीं सकता। जब तक आत्मा प्रभु प्रेम में नहीं डूबती उसको जो करना है करे, परंतु वो सुख नहीं मिल सकता। एक तरफ इंद्रिय सुख है, एक तरफ अतिंद्रिय। जब तक अतिंद्रिय की टेस्ट नहीं, चेतना इंद्रियों में डूबी रहती, इस जीवन का पुरुषार्थ जहां पर भी जो खड़ा है इस समय वहीं रुके, स्टैच्यू स्टॉप, और आत्मावलोकन करे। हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन, जैसे सिंह होता है पीछे मुड़कर देखता है उसको कहते हैं सिंहावलोकन, इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन, खुद खुद को पीछे मुड़कर देखना, इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को अंत मन में झांक कर देखना, मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया, मैं कहां क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जो कुछ मैंने पाया यही जीवन का लक्ष्य है या और कुछ। यदि दिशा और दशा ही गलत है तो स्टॉप, और फिर से स्वयं को स्थिर करना है। तो आज पूरा दिन और कल पूरा दिन, दो दिन यहां बैठकर केवल सुनना नहीं है, पर सुनते सुनते अंतर जगत की यात्रा करनी, अपने जीवन के सारे दृश्य देखने, सारे संबंध देखने, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, मित्र, ऑफिस, अपने सारे जीवन को एक दृश्य, एक स्क्रीन पर देखना है, क्या ये सब ठीक चल रहा है या मुझे इसको ठीक करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सी वो बात है जिसके वजह से हलचल है, बेचैनी है, दुख है, संताप है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, अस्थिर है चेतना, अशांत है, सब कुछ है बाहर परंतु फिर भी मन स्थिर नहीं, क्यों? अगले 2 दिन सुनते सुनते अपने आप को देखना, आज सुबह का की साकार मुरली वरदान, चेक और चेंज, केवल चेक करोगे तो दुखी हो जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, साथ में क्या करना है, चेंज, अध्यात्म अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद ने कभी धर्म की परिभाषा की थी, एक ही शब्द की परिभाषा है धर्म की, धर्म अर्थात रिलीजन इज रियलाइजेशन, बस धर्म अर्थात अनुभूति, सब कुछ कर लिया, तीर्थ यात्राएं कर ली थी, कहानी शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ किया परंतु अनुभव कुछ नहीं, 0, धर्म अर्थात अनुभूति। किसी सूफी संत से पूछा था कभी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है, उन्होंने उत्तर दिया था, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, कहीं पर रुक नहीं जाना कि हम तो बहुत अध्यात्म में आगे बढ़ गए, जो कुछ अब तक पाया है वो केवल मील का पत्थर है, गंतव्य आगे है, और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम बढ़ना होगा, हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, नया मार्ग रचना होगा। तो इस यात्रा की हम आज से, सभी यात्री तो है ही, पथिक है ही, परंतु बीच बीच में जागरण की आवश्यकता है ताकि हमारा भी जीवन श्रेष्ठ बन जाए, महान बन जाए, ऊंचाइयों को पाए। सदा कल्प तरुण चे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अर्णव पीयूष, चलता फिरता जैसे वन बन जाए, कल्प तरु जो हम बोले वो अमृत की तरह हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए, एक बार मुरलियों में आया है, अपनी घोट तो नशा चले, स्वयं का ही चिंतन करना होगा। मुरलियां बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत लिख ली, मुरलियां बहुत सुना ली, कुछ और भी करना, जैसे रामायण महाभारत में दिखाया है, सांदीपानी के आश्रम में श्री कृष्ण से मिलने परशुराम आते और वो परशुराम कृष्ण से कहते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है, मुरलियां बहुत बजा ली, माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए हो, मुरलियां बहुत सुन ली और मुरलियां बहुत लिख ली और मुरलियां बहुत सुना दी, कोर्स बहुत कर लिया और कोर्स बहुतों को करा लिया और प्रदर्शनी बहुत सारी कर ली, एक काम अभी भी बाकी है, वो है तपस्या, वो है ज्ञान का गहन चिंतन, और वो है मौन, और वो है एकांत। जब तक ये तीन चीजें नहीं जीवन में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौन, एकांत, अंतर्मुखता, साइलेंस, सॉलिट्यूड, इंट्रोवर्शन, जब तक इस मौन में प्रवेश नहीं करती आत्मा, एक विदेशी लेखिका ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसे भारत की अध्यात्म की कोई खबर नहीं, वो विदेश की है। उसने लिखा, यदि एक व्यक्ति एक कमरे में बंद हो जाए 3 हफ्ते के लिए, जहां ना मोबाइल रहेगा, ना कोई किताब, ना लैपटॉप, ना टीवी, और उसी एक कमरे में बैठकर 16 घंटे केवल मेडिटेशन करे, तो जब बाहर निकलेगा तो वो नहीं रहेगा जो पहले था। उसने मेडिटेशन शब्द का प्रयोग किया, और उनका मेडिटेशन अर्थात श्वास, आना और जाना, बस ध्यान करे। 16 आवर्स मेडिटेशन, 3 आवर्स आइसोलेशन, 3 वीक्स आइसोलेशन, और वहां पे कोई किताब नहीं होगी, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई लैपटॉप नहीं होगा। सोचने जैसी बात है। अध्यात्म की यात्रा मौन की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा अंतर्मुखता की यात्रा है, एकांत की यात्रा है। इट्स द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेला अकेले की तरफ जाए, एकला चालो रे, एकांत की पगडंडी। तो क्या हम करें जिससे रूहानी नशा चढ़ जाए, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हो जाए, रूहानी खुमारी हो जाए। पाय ऋषि ओ दंग गाउनी अभंग, इतनी आत्मा डूब जाए प्रभु प्रेम में, उस नशे में निरंतर रहे, क्या किया जाए। कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याती चित्ती, एची कृष्ण होती कृष्ण ध्यानी। वो कृष्ण के ध्यान में ऐसी मगन है कि उसके जैसी होगी। कुछ दिनों पहले संडे की मुरली थी, उसमें बाबा ने याद किया, तुमको क्या बनना है, उद्धव बनना है या गोपी बनना है। उद्धव अर्थात जो ज्ञान सुने और सुनाए, गोपी अर्थात जो अनुभव करे। उद्धव तो बहुत है संसार में, परंतु गोपियों का आकार है जो प्रभु प्रेम में डूब जाए, ईश्वरीय प्रेम में डूब जाए। हमारी आंतरिक अवस्था ऐसी हो, नशा, नारायणी नशा, रूहानी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हर एक को नहीं चढ़ सकता। ऐसा कहा जाता है अध्यात्म के इस मार्ग में हजारों निकल पड़ते हैं, एक ही पहुंच पाते, क्योंकि इस मार्ग में दिवस रात्र आम्हा युद्धासा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, दिन रात युद्ध है, इसलिए सब नहीं पहुंच पाते। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हमेशा कंफ्यूजन, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, यहां बैठे बैठे अपने मन को, अपनी बुद्धि को अगले 2 दिन के लिए संसार के सभी चिंतन से बाहर निकालकर आत्मचिंतन करना है, स्वचिंतन करना है, परमात्म चिंतन करना है। तो ऐसी 5 बातें हैं जो नशा चढ़ाने के लिए आवश्यक है। कौन कौन सी? नशा कब चढ़ता है व्यक्ति को? कोई दारू पीता है तो नशा कब चढ़ता है? पहले यहां से शुरुआत करें। सबसे पहले तो डोज कम ले रहे हैं। नशा चढ़ने के लिए क्या चाहिए? डोज ज्यादा चाहिए। सुबह अमृत वेला उठे, योग कर लिया, मुरली सुन ली और घर गए, काफी है क्या? इतने से नहीं होगा। डोज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाओ। और जीवन के प्रत्येक समस्या का उत्तर है अमृत वेला योग। अभी हम सामने देखना, आजू बाजू ना देखना। पिछले 1 माह से जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। धर्मराज की अदालत है, इधर उधर नहीं देखना, आजू बाजू बहुत कम। जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, जिन्होंने आज सुबह अमृत वेला मिस कर दिया, पता था आज बढ़ती है, प्रातस्मराम युति संस्कुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गति तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। सुबह सुबह उठना, प्रातस्मराम युति संस्कुरदात्म तत्व, उस आत्म तत्व का चिंतन करना। सारे दिनचर्या में तो सारे संसार की आत्माएं जागी हुई है, परमात्म चिंतन करने का समय है सुबह। और अमृत वेला कितने बजे चालू होता है? कितने बजे? कम से कम 3:30 बजे तो उठना ही है। साधारण पुरुषार्थ की परिभाषा है साधारण पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ अर्थात सुबह सुबह अमृत वेला उठना और फिर मुरली क्लास जाना, अलर्ट होकर बैठना, लिखना मुरली, फिर याद में भोजन बनाना, फिर याद में भोजन खाना, सारे दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ा थोड़ा करना, फिर शाम को नुमा शाम का योग करना, फिर ज्ञान की थोड़ी चर्चा करना, रात्रि थोड़ा चार्ट लिखना या बताना और बाबा की याद में सो जाना। इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। क्या कहा जाता है? साधारण पुरुषार्थ। और हमें क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ। तो ये सारी जो बातें हैं इसको डबल कर देनी पड़ेगी, तीव्रता, इंटेंसिटी। भक्ति मार्ग में कहा जाता है जब तक 3 प्रकार के प्रेम एक ना हो जाए तब तक भगवान प्रकट नहीं होगा। पहला, एक माँ का अपने बच्चे से जितना प्यार है, लगाव है, आसक्ति है, मोह है, वो सारा भगवान की तरफ हो जाए। दूसरा, एक लोभी व्यक्ति का धन से जितना प्यार है वो एक हो जाए। और तीसरा, एक विकारी व्यक्ति का देह से जितना प्यार है, कामी पुरुष का शरीर से जितना प्यार है, ये 3 प्रेम एक हो जाए और भगवान की ओर डायरेक्ट हो जाए, तब भगवान आएंगे, तब तक प्रकट नहीं होता। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत 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 कम है। इसलिए कहा कि अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं द डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय असंतोष। संतुष्ट मनी बनना वो अलग बात है, पर पुरुषार्थ में क्या चाहिए? आतिश, आग, एक अतृप्ति कि अब तक जो कुछ किया, अब तक जो कुछ पाया वो कुछ भी नहीं है, और करना है, और आगे और आगे और आगे और आगे। तो सबसे पहले नशे के लिए क्या चाहिए? डोज को बढ़ाना है, अमृत वेले का टाइम भी बढ़ाना है धीरे धीरे। 3:30 बजे से तो चालू करना है, पर धीरे धीरे 5-5 मिनट पीछे जाना है, अपनी दिनचर्या, जॉब, वर्क, सेवा को देखते हुए। अब दूसरा है, अमृत वेले के बाद नींद कौन कौन करता है, जरा हाथ खड़े कर। एकदम अच्छे से नींद किसको आ जाती है? अमृत वेला योग पूरा हुआ और उसके बाद क्या? अच्छे से नींद आ जाती है 6:30 बजे तक 6 बजे तक, और फिर तैयार होके मुरली क्लास। अमृत वेले के बाद सीधा सो जाना, अर्थात की कमाई चट कर देना। वो समय है चिंतन का, वो समय है मनन का, वो समय है प्रकृति के सानिध्य का। एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, जो भी, बस अभी एकाग्र होके बैठेंगे। सुबह के बाद का समय चिंतन का समय, मौन का समय। अगर उस समय सेवा भी है तो वो सेवा भी चिंतन करते करते करनी, क्योंकि सुबह अमृत वेले के बाद जो चिंतन किया जाता है उसका प्रभाव सारी दिनचर्या पर पड़ेगा। दिन भर में भी चिंतन हो सकता है, परंतु वो उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना सुबह। सबसे पहली बात, डोज को बढ़ाना, अमृत वेले के टाइमिंग को बढ़ाना, मुरली चिंतन को बढ़ाना है। सारे दिन भर में अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है, मन बुद्धि को कंट्रोल कर, आज है स्लोगन, बीच बीच में मन बुद्धि को कंट्रोल कर लो, ट्रैफिक स्टॉप। और जितना महत्व अमृत वेला योग का है उतना ही महत्व लोमा शाम के योग का। कोई जॉब करता है, कोई ट्रैवल में है, कोई सेवा में है, सब कुछ हो, फिर भी शाम का समय अपने आप को एकाग्र कर देना, संसार के चिंतन से परे सीधा एक परमात्मा चिंतन। और रात्रि सोने से पहले, एक है थक गए और सीधा जाके लेट गए, एक है टीवी देखते देखते सो रहे, बातें करते करते सो रहे, सोशल मीडिया पर लगे हुए और सो रहे। सोने का अंतिम संकल्प उठने का प्रथम संकल्प बन जाता है। इसके लिए किन विचारों के साथ आत्मा सो रही है? अगर समय मिला तो हम एक दूसरे टॉपिक के भी बीच में चर्चा करेंगे, योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? द स्लीप ऑफ योगा, कैसे उसको करें, उसकी 8 स्टेप्स है, कौन कौन सी सोपान है उसमें, और कैसे रात्रि की नींद योग निद्रा बन जाए ताकि अपने आप सुबह आंख खुले और बहुत सारी शरीर की बीमारियां भी इस योग निद्रा से नष्ट हो। तो डोज बढ़ाना है, टाइम बढ़ाना है, अध्ययन बढ़ाना है। अध्यात्म में बहुत तेजी से उन्नति करने के लिए एक आदत की आवश्यकता है और वो है पढ़ना, रीडिंग, स्पिरिचुअल लिटरेचर। कई सारे ब्राह्मण आत्माएं ऐसी है कि जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, मुरली पढ़ती है बस, ज्ञानामृत है, लोगों के अनुभव है। यज्ञ में कितनी सारी जगदीश भाई और दूसरे भाइयों की लिखी हुई किताबें हैं। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि बाबा ने इसका उत्तर दिया नहीं? कोई प्रश्न पूछता है जिज्ञासु, ऐसा क्यों, तो कई बार हमको पता कहना पड़ता है ये हमको नहीं पता, हमने खोज क्यों नहीं की, ढूंढा क्यों नहीं। मुरलियों में ही कितनी बातें आ जाती, तिजरी की कथा, ये कथा, वो कथा, गुल बकावली की कथा, ढेर सारी नई नई बातें आती। तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, आध्यात्मिक लिटरेचर। और जो व्यक्ति पढ़ने में बिजी रहता है उसके पास व्यर्थ बहुत कम आता है। जिसको रीडिंग की हैबिट है उसका टाइम वेस्ट कम से कम होता है। तो पढ़ने को बढ़ाना है, सुनना भी बढ़ाना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कान इतने विशाल है कि भगवान की हर बात को सुनने के लिए चातक पक्षी की तरह लालायित है, इतने विशाल कर्ण है, सब सुनना चाहते हैं अध्यात्म की हर बात को, कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो लक्ष्य ये भी रखना है, वरिष्ठ भाई दादिया उनकी बहुत सारी क्लासेस हैं, हर दिन कम से कम एक क्लास जरूर सुननी। और केवल सुनना नहीं है, वो कनरस है भक्ति मार्ग जैसा, आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पॉइंट्स नोट करो क्या कहा, अब क्लास बंद, पॉइंट्स को लो और उन पॉइंट्स का अलग से चिंतन करो। अगर सुनाने वाले ने पांच बातें बताई तो हम अपनी चिंतन से पांच बातें और ऐड करें, केवल सुनना सुनना ना रह जाए, वो भक्ति मार्ग है। जैसे राम कथा सुनने जाते हैं, कथा पूरी हुई तो कपड़े झाड़ते और साथ में प्रवचन को भी झाड़कर वापस आ जाते, वो नहीं हो। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात परिवर्तन, ज्ञान अर्थात महसूसता। तो डोज बढ़ाना पहला। दूसरा, नशा चढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सुबह एक बार पी लिया किसी व्यक्ति ने और दिन भर पिया ही नहीं तो नशा चढ़ता है कि बार बार पीना पड़ता है? सुबह पिया और पियो, दो घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद, बार बार पीते रहना पड़ता है, तब कहीं जाके नशा चढ़ता है। नहीं तो पिया और फिर भी आराम से सीधा चल रहा है, कौन मानेगा ये पिया है? पीने के बाद व्यक्ति कैसे चलता है? कैसे चलता है? लुढ़कता है, तब पता चलता है हाँ अभी ठीक है, फुल पिया हुआ है। लक्षण दिखाई देने चाहिए, वो है जिस्मानी पियक्कड़, हम है रूहानी पियक्कड़, स्पिरिचुअल ड्रंकर्स, जिन्होंने कौन सी वाइन पी है? डिवाइन लव की। तो केवल सुबह कर लिया और हो गया उससे काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? सारे दिन भर थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा सा टाइम मिला 10 मिनट, तुरंत डायरी खोलो या मोबाइल खोलो, मुरली की पॉइंट है, चिंता, टाइम मिला डिस्कस, सुबह सुन ली और काम पूरा हुआ, ऐसे नहीं करना। एक एक मुरली में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है, केवल उस गहराई में चले जाओ तो कितने रत्न हाथ आ जाएंगे। चाहे किसकी कितनी भी व्यस्त दिनचर्या क्यों ना, बाबा ने अव्यक्त वाणी में महावाक्य कहे हैं, अति के समय अंत का अभ्यास करो, अति अर्थात बहुत बिजी है उसमें अंतिम स्थिति का अभ्यास करो। कभी मुरली में बाबा ने कहा है सारे दिन भर चिंतन होता रहे, ऐसा नहीं सुबह चिंतन कर ली और हो गया, सारी दिन भर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट्स और उसका विस्तार मन में। तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, अर्थात बार 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 बार। उसी तरह इसमें आता है ड्रिल्स। मधुबन में हम लोगों का ग्रुप है, उसमें हर दिन एक ड्रिल सुबह सबको दी जाती है, जिसका 9 बजे से लेकर तो रात को 9 बजे तक एक एक घंटे में हर एक को अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास हम लोग करते हैं, जैसे एक ड्रिल मैं आत्मा यहां से गई परम धाम में शिव बाबा को टच किया आ गई, एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास मैं आत्मा यहां से गई सूक्ष्म वतन बाबा से दृष्टि ली आ गई, छोटा सा अभ्यास है परंतु एक एक घंटे में सारी व्यस्त दिनचर्या, हर एक बहुत बिजी, किसी को नीचे जाना है, किसी को ऊपर जाना है, किसी को लोगों को घुमाना है, किसी को अपनी सेवा है, वो सब करते हुए भी शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन देह है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, न च भाति भूत संघम, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं वो चेतना हूं। एक सेकंड में फुल स्टॉप, एक एक घंटे में अभ्यास, एक सेकंड में परमात्मा प्रेम में डूब जाना, एक एक दिन भर में अभ्यास, एक सेकंड में आत्माओं को इमर्ज करना, सकाश देकर वापस आ जाना, अभ्यास, एक सेकंड में 7 स्वरूपों में स्थित हो जाना, आत्मा प्रेम ज्ञान आनंद अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, अभ्यास। दूसरा क्या बताया, बार बार, सुबह पीने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, दिन भर पीना, दिन भर, सुबह अमृत वेला किया, फिर मुरली क्लास में गए, फिर मुरली क्लास में नोटबुक खोली, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, फिर डायरी बंद और बाजू में, और फिर डोलना थोड़ी देर, और बीच में झुटका, और फिर एकदम मीठे मीठे सिक्की लदे। एक भाई ने अभी हमको डायरी दिखाई थी मधुबन में, उसने कहा था ये मेरी आज की मुरली है लिखी हुई, गोल 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 गोल, पता ही नहीं क्या लिखा, इतना नींद में था और आंखें खुली थी और पूरी मुरली चालू थी लिखनी, और बाद में देखा ये क्या लिखा, गोल 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 था कुछ, भयंकर नींद का प्रकोप। धारणा के लिए मुख्य सार 1, 2 वरदान, स्लोगन, डायरी बंद। अब कब मिलेंगे, कल ऑफिस सेंटर से जाते जाते चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गायब, घर पहुंचते पहुंचते प्रश्न गायब, नाश्ता बनाते बनाते धारणा के लिए सार गायब, नाश्ता खाते खाते वरदान गायब, ऑफिस जाते जाते या कहीं ड्यूटी पे जाते जाते स्लोगन गायब, और शाम को कोई पूछे मुरली कैसी थी, बहुत अच्छी, क्या थी वो मत पूछो, डोंट आस्क, बहुत ही अच्छी मुरली थी, बहन जी ने ऐसी मुरली सुनाई, वाह, क्या थी वो कुछ नहीं, पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो क्या थी, ये भक्ति मार्ग। एक मुरली में बाबा ने कहा था सेंटर पे जाना, मुरली सुनना, वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल, कुछ और करना पड़ेगा उसके साथ, और वो और है, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब टॉपिक्स लिखना है, क्या करना है, मुरली सुनते सुनते केवल टॉपिक्स, मुरली में आया बाजोली का खेल, एक ही शब्द लिखो बाजोली, मुरली में आया बाप है पतित पावन, केवल एक ही शब्द लिखो पतित पावन, ऐसे 10 टॉपिक्स लिख के रख देना, अब सारे दिन भर एक एक टॉपिक पर चिंतन करना, पॉइंट बहुत लिख लिए, कितनी डायरिया भरी होगी, बहुत सारी डायरिया, कोई ऐसा है जो पुरानी डायरी कभी खोल के देखता है उसमें क्या है, नॉट इंटरेस्टेड, नया चाहिए, वखर, जॉब चीन, नया माल। ऐसा कोई है जो ये कहे कि कल की मुरली है क्या आपके पास, मुझे पढ़नी थी? किसी को नहीं पढ़नी है कल की, क्या पढ़नी है सबको? आज की। कल का हो गया क्या पूरा चिंतन? टॉपिक्स लिखने, 5 या 10। मुरली में आया ये है सच्ची स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? मुरली में आया विदेही बन जाओ, विदेही अवस्था क्या है? कल के उस लोक वरदान में था स्वभाव संस्कार, रस्सी नहीं लकीर है। या फिर प्रश्न लिखना, कड़े स्वभाव संस्कार से मुक्त कैसे? फर्स्ट। दूसरा, मुरली में अचानक वाक्य आ गया अशरीरीपन, अशरीरी कैसे बने? ऐसे 5 प्रश्न लिख के रखे अब सारे दिन भर में, वो छोटी सी डायरी या मोबाइल पर ही टाइप करके रख दो सीधा, सारे दिन भर में उस पर चिंतन करना जब जब टाइम मिले। टाइम यहां किसी के भी पास नहीं है, टाइम को क्या करना पड़ेगा? चुराना पड़ेगा। पीने नशे के लिए क्या चाहिए? बार बार पीना पड़ेगा, सारे दिन भर पीना पड़ेगा। तीसरा, नीड सॉल्यूशन। कोई दारू में पानी डाल दे तो नशा चढ़ेगा क्या? प्योर सॉल्यूशन चाहिए, जिसको कहते हैं नीड सॉल्यूशन, अनकंटेमिनेटेड, कुछ भी उसमें नहीं मिक्स करना। वैसे मुरली जो है वो नीड सॉल्यूशन हो, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना है वो है नीट सॉल्यूशन। टोटल 1969 से लेके तो 2017 तक 1100 अव्यक्त वाणियां हैं। किस किस की पढ़ के हो गई? हाथ खड़ा कर, ताली बजाना चाहिए अगर किसकी खड़ी हो। एक ही भाई है जिसकी पढ़ के हो गई, इधर माता जी है। टोटल 1100 अव्यक्त मुरली है 69 से लेकर तो 2017 तक। सबसे पहला काम तो इन सारी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन कर। अगर हो गया है तो फिर आराम से सो सकते, अगर हुआ है तो, परंतु नहीं हुआ। केवल पढ़ना भी पर्याप्त नहीं है, समझना भी है उसको। तो ये एक नया काम हर एक के लिए। पहला काम बोला मधुबन में जाना, ठीक है। अब ये दूसरा काम क्या करेंगे? अव्यक्त मुरलियों की स्टडी चालू करेंगे, पठन। वो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पाठ, हरि पाठ। पाठ अर्थात बार 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 भागवत पाठ, रामायण पाठ। पाठ क्या होता है? पाठ अर्थात बार 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 पुनरुक्त करना होता है, बार बार पढ़ना होता है। एक बार पढ़ के हो गया काम पूरा हुआ ये भी नहीं, पर पहले तो एक बार पढ़ना है सारी A to Z। फिर ये मत कहना कि ये तो हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ गई आउट ऑफ सिलेबस। हम बाबा को कहेंगे बाबा ये क्या है? ऐसा होता है क्या कभी? ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो आपने किसी की मुरली में नहीं कहा। बाबा कहेंगे तुमने नहीं पढ़ा, मैंने कहा था 1982 में इस मुरली में इस डेट में इस पेज नंबर पर, गो एंड सी रेफर। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जीवन की जिसके विषय में बाबा ने कुछ नहीं कहा। ऐसा कोई पॉइंट सिद्धांत नहीं है साइकोलॉजी का, माइंड साइकोलॉजी, जिसके विषय में भगवान ने कुछ नहीं कहा। हर एक चीज कही है बाबा ने, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज कही है। ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है जो बाबा ने नहीं कही। यहां तक हम ये नहीं कह सकते उसको ये पता नहीं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, अव्यक्त महावाक्य। जो मुरलियों में आता है, झूठ आता है, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, सब है वो, है या नहीं है? है ना? पर उसने भी ऐसी तीन काल्पनिक चीजें खड़ी करके रखी अपनी रक्षा के लिए। पहला तो ड्रामा, क्योंकि अगर बाबा ने कहा यह ड्रामा है तो नहीं तो बाबा के पीछे पकड़ जाएंगे, उसको उठा के अपने घर ले जाएंगे, पहले बताओ मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। बाबा क्या कहता है? ड्रामा। दूसरा माया, मैंने कुछ नहीं किया, माया ने तुमको किया, मेरे तो कुछ नहीं किया, माया ने सब कर दिया। और तीसरा ये ऐसा क्यों हो रहा है वैसा, यहां बारिश, कुदरत, ये कुदरत है, खत्म, नो क्वेश्चन। ड्रामा, माया, कुदरत। तो 1970s की अव्यक्तवाणियां, 1980s की अव्यक्तवाणियां है, बहुत बहुत गहरी है, इतनी डेप्थ है कि एक अव्यक्तवाणी में हमारी कहां पड़ती होगी। और हम कहते हैं हमको नशा चढ़ रहा, चढ़ता ही नहीं, क्या करें, कैसे चढ़ेगा? पहले तो इतना कम पीते हो और फिर एक ही बार पीते हो और उसमें भी मिक्सचर करते हो, इधर मुरली भी, इधर पीस ऑफ माइंड भी चालू है, उधर दूसरा चैनल टेलीविजन सीरियल। पीस ऑफ माइंड जब आया तो बहुत अच्छी बात है, लोगों ने टीवी खरीदा, टीवी देखना चालू किया, पर साथ में और एक घटना हो गई अद्भुत, जो पहले सीरियल नहीं देखते थे उनका सीरियल देखना चालू हो गया। सीरियल भी देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, फिर पीस ऑफ माइंड भी देखते हैं, फिर कोई क्लास भी सुनते हैं, बीच में मूवी भी देख लेते हैं छोटी मोटी। ये नीट सॉल्यूशन तो हुआ ही थी, नीट सॉल्यूशन। तीसरा, चौथा, इधर दारू भी पी रहे हैं और साथ में एक लिमका की बोतल भी है और शरबत भी है, साथ में दो दो दूसरी चीजें भी पी रहे हैं। एक तो बताया मिक्स कर रहे हैं, मिक्स नहीं करना है, नीट सॉल्यूशन। इसमें दूसरी भी चीजें हैं, वो भी कर रहे हैं साथ साथ, मिक्स है, श्रीमत भी है, मनमत भी है, परमत भी है। जैसे एक परिवार था नया नया ज्ञान में आया, तो उनको शादी में बुलाया गया, शादी एक 5-स्टार होटल में थी और वो सब ज्ञान में थे वो परिवार के लोग, तो प्लेट के ऊपर फिर समोसा आ गया, वो सर्व किया, तो अभी वो देख रहे थे ये क्या करती है, तो बीके है, ये तो खाते नहीं बाहर के। तो उसने क्या किया, वो भाई ने समोसा जो था उसका कवर निकाला और आलू बाहर कर दिया और खाने लगा। उसने कहा हम अंदर का आलू खाने लगा और बोला कि मैं हम बाहर का नहीं खाते, समोसा है हम तो अंदर का खाते, हम बाहर का नहीं खाते, बीके है ना। व्यक्ति छल करता है, मुरलियों में आया है, जो मिलिट्री में है वो पाव रोटी खा सकते हैं, अभी मिलिट्री से रिटायर होके 10 साल हो गए, पर बाबा का महावाक्य पकड़ के रखा है कि बाबा ने कहा है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, वो कोई कोई बच्चे चोरी करते थे, बिना पूछे उठा लेते आम, पर बाबा ने खरबूज के लिए तो नहीं बोला ना हमने तो खरबूज लिया। इसको कहते हैं फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत, ठीक ठाक करना श्रीमत को, श्रीमत है इसको थोड़ा ये ठीक ठीक नहीं लग रहा है, अपने हिसाब से थोड़ा इसको, हाँ ये ठीक है। श्रीमत इज नॉट माय वे एंड योर वे, श्रीमत मतलब मैं ये सोचता हूं वो तुम ये सोचते हो नहीं, श्रीमत इज द वे, माय वे योर वे नहीं है, द वे, ये है मतलब ये है बस। अच्छा वो सीरियल बहुत अच्छा है, अच्छा वो फिल्म बहुत अच्छी है, अरे रहने दो, फिल्म कितनी भी अच्छी, हमको नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, नहीं देखनी, फाइनल बस, अब उसमें जाना ही नहीं है, कितनी भी अच्छी रहने दो, जब सोच लिया ये मार्ग हमारा है ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है उसको क्या करना है, रोड कैसे बनाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई पढ़ रहा है उसको क्या करना है, कौन सी दवाई से क्या होता है। जिस घर में जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पता करना है? अच्छा, सीरियल कौन कौन देखता है, जरा हाथ खड़े करना। अरे बिल्कुल नहीं। हमारे इधर एक भाई था, वो कहता था अशोक भाई की क्लास है रात को 9 बजे। अशोक कौन सी क्लास? सम्राट अशोक। और टीवी पर सीरियल आता था ना, वो देखने बराबर पहुंच जाता था। और एक भाई तो बहुत ही, हम बाबा को याद भी करते हैं और टीवी भी देखते हैं। जैसे नीचे देखते समय बाबा को याद करते हैं और खाते समय फिर टीवी भी देखते थे। इधर नीचे देखते हैं बाबा को याद करते हैं और ऊपर खाते हैं, दोनों काम साथ साथ से बैलेंस, याद भी और टीवी भी देखना। अच्छा, टीवी के सामने बैठकर कौन कौन खाना खाता है? इसमें भी बिल्कुल नहीं, बहुत है। और सीरियल भी ऐसे होते हैं, एंड वहां होता है क्लाइमैक्स, आगे क्या होगा। एक कुमारी मिली थी, वो कहती थी जब तक ज्ञान में नहीं थी कुछ नहीं टीवी वगैरह देखती थी, जब से ज्ञान में आई तब से टीवी देखना चालू हो गया, ये नई आदत बन गई। और एंड ही ऐसा होता है एपिसोड कि आगे क्या होगा, बेचैनी। और जैसे ही वो टाइम आ जाता है अपने आप जाता है व्यक्ति, ढूंढ ही लेता है टीवी को, वो भी एक एडिक्शन। तो मिक्स कर रहे संसार की चीजें, संसार की बातें ज्ञान में, तो नशा कैसे चढ़ेगा? लास्ट, नशा सबसे ज्यादा कब चढ़ता है? महफिल में जब दोस्त होते हैं, 3-4 लोग एक साथ मिलके जब पीते हैं तब बहुत नशा चढ़ता है। तो संगठन चाहिए जैसा अब बना है, और संगठन के लिए 2 ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। 2 मिल जाए संगठन बन गया। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना है जिसको ज्ञान योग में बहुत इंटरेस्ट है, और रोज 24 घंटे में एक बार हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। जो कुमार है अगर साथ में रहते हैं तो रात को आधा घंटा मिलके सुबह की जो अव्यक्त साकार है अव्यक्त वाणी की चर्चा करें और फिर सोए। अगर कोई घर गृहस्थी में रहते युगल है, दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, रात को सोने से पहले 9:30 से 10 बजे तक अपने दोनों की एक सीरीज चालू कर दो, स्पार्क की छोटी छोटी बुक्स है, एक सारी मुरली डिस्कशन सेंटर पर। बहने हैं वो भी कई सेंटर पर हमने देखा है, रात्रि क्लास होती है बहनों की, सेंटर निवासी जितने हैं वो सब मिलके बैठते हैं और ज्ञान की डिस्कशन करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं सोने से पहले, बहुत जगह है। 2 लोगों की, और जिसका कोई भी नहीं है, सब विरोधी है घर में, झगड़ा, उसने क्या करना चाहिए? बाबा के साथ वो तो उत्तर ही नहीं देता, चुप बैठता है, परम मौन। और सबसे ज्यादा तो परिस्थिति में परम मौन हो जाता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा बोलता है थोड़ा थोड़ा, बाकी परिस्थिति आती है तो कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा है, किसी भाई ने पूछा था बाबा से हिस्ट्री हॉल में, बहुत पुरानी बात, हिस्ट्री हॉल में बहुत पुराना भाई, उसने पूछा था बाबा रोज अमृत वेला में आपसे बात करता हूं आप कोई भी जवाब नहीं देते, सीधा अव्यक्त बाप दादा से, मैं रोज आपसे इतनी बातें करता हूं आप एक भी जवाब नहीं देते। बाबा ने क्या उत्तर दिया हो? क्या उत्तर दिया होगा? उसने पूछा मैं बाबा आपसे रोज इतनी बातें करता हूं आप एक भी प्रश्न का मेरे उत्तर नहीं देते हो, आरोप। बाबा ने कहा बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप उत्तर न दे, ये हो नहीं सकता। परंतु बच्चे के बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जरूर बुद्धि यहां वहां अटकी है, देहधारियों में अटकी है, इसकी उसकी याद है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान उत्तर न दे, उसको पूछा जाए। भक्ति मार्ग में उसने उत्तर दिए, परंतु आर्त पुकार दिल से निकली हुई आवाज हो, हरि नीचे पाड़स व्याघ्र धरि मेले तस तजला जाहरे मजला आता, जैसे कोई हिरण का बच्चा वो शेर पकड़ के ले गया, कैसी बेचैन होती है मां, वैसी बेचैन जी, तब कहीं वो सुनता है आर्त पुकार। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने हमको अनुभव सुनाया, सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन, उसने कहा यह अनुभव आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया और मुझे लगता है शायद लोग हंसेंगे, इसलिए आपको पहली बार सुना रही, तो आप बताओ यह सत्य है या झूठ। उसने कहा मैं विदेश गई थी और कुछ समय वहां रही, तो वहां शाम को एक गीता पाठशाला में जाती थी सेंटर की बहन, और वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता था, और एक बार मैं जा रही थी और जाते जाते अचानक दलदल में फंस गई। वो दलदल था, मुझे दिखाई नहीं, पूरा दलदल था, ऊपर से सूखे पत्ते थे और पैरों तक, घुटने तक, कमर तक एकदम धंसती जा रही है, अंदर 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 अंदर। ऊपर से देखा, चिल्लाया, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एकदम से उसने पहले तो देखा कोई है मेरी मदद करने जो मुझे बचाए, इतना तेजी से अंदर धंसती जा रही है उसकी वो सफेद साड़ी, अंदर अंदर जा रही है। एकदम से उसने बाहर से अपनी बुद्धि को एकदम अलग कर दिया और एकदम बाबा को याद किया कि यदि मैंने सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपकी अगर सेवा की हो और अपने तन मन धन आपके यज्ञ में स्वाहा किया है, अर्पित किया है, समर्पित किया है अपने जीवन, और यदि आप मेरे से कुछ सेवा करना चाहते हो तो बाबा मेरी रक्षा कर। नीचे नीचे तक जा रही है, बस अब डूबने ही वाली है, उसमें आंखें बंद हो गई, जैसे बेहोश सी हो गई, उसको कुछ पता नहीं, और जब उसकी आंख खुली तो वो बाहर थी। और उसने देखा कौन है, कोई भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पंगु लंगयते गिरे मुखम करोति वाचालम, ये भक्ति मार्ग का गायन है, इधर भी होगा, पर वो पुकार कैसी हो, दिल से। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं, मुख का सौदा नहीं। नहीं तो बाबा 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 इधर आंखों से आंसू भी बह रहे और बाबा 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 भी कहना चाहते, इधर कंप्लेंट भी चालू है और बाबा बाबा भी चालू है। झूठ यहां चल ना सके। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, वो शिष्य कहते हैं, वो जा कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, वो कहते हैं कैसे सुनाए, सब लोग तुम्हारे विरोधी है, पत्थर मारते हैं हम पर क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करते हो, और हम कैसे जाए, हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, कैसे सुनाओ लोगों को। वो कहता है सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी एडेड अनटू इट, पहले भगवान का राज्य प्राप्त करो, ये अपने आप ऐड हो जाएगा। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, केवल हरेक नहीं जो कहता है प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ये कहने वाला नहीं, परंतु जो मेरे पिता की श्रीमत पर चलता है, ही हु फॉलो द विल ऑफ माई फादर, शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, केवल वही स्वर्ग में आएगा, बाकी नहीं। ऊपर ऊपर से जो बोलने वाले कभी नहीं आएंगे। यहां दिल का सौदा है, सच्चाई कितनी है कि आत्मा में। दादी प्रकाशमणि जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस थी, सब वकील बैठे थे, वकील जज। तो दादी ने कहा, दादी कहती है कि मैंने बचपन से आज तक एक भी झूठ नहीं बोला, आप में से कौन कितने हैं ऐसे कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हाथ खड़े करो। सब वकील थे, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, हिम्मत ही नहीं झूठ यहां चल ना सके। सच्चाई चेतना कितनी सत्य पर टिकी है, और जिनके अंदर आडंबर है, दंभ है, हिपोक्रेसी है, वो डूब जाते हैं। ये मार्ग दंभ का, आडंबर का, झूठ का नहीं है। केवल कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। संत तुकाराम ने एक जगह कहा है, यदि ये गधा, इसको अगर सन्यासी के वस्त्र पहन लिए जाए तो क्या ये योगी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पांचवी चीज कौन सी चाहिए? संगठन, महफिल चाहिए, विपाक चीजें चाहिए तो नशा चढ़ेगा। पहली डोज को बढ़ाओ, दूसरा बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, कई बार दिनचर्या में, कई बार बाबा को याद करो, दिनचर्या में कई बार एकाग्र हो जाओ, दिनचर्या में कई बार अशरीरीपन, रूहानी ड्रिल का अभ्यास। तीसरा नीड सॉल्यूशन, उसमें इधर मुरली भी पढ़ रहे हैं, फिर इधर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, फिर वो भी पढ़ रहे हैं, फिर वो भी पढ़ रहे हैं, उधर भी पढ़ रहे हैं, नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, संसार की किताबें भी पढ़ रहे हैं, सब मिक्स कर रहे हैं। और इसमें सबको काम दिया है, कितना दिन में करेंगे ये काम? सारी अव्यक्त वाणी एक साल, आज कौन सी तारीख है? 20 सितंबर 2019। तो 20 सितंबर 2020, एक साल। कौन कौन तैयार है? एकदम हाथ नहीं खड़ा करना, सोच समझ के। इंद्र सभा है, धर्मराज की अदालत, रोज 1100 अव्यक्त मुरली है, सारी की सारी स्टडी करना, मासिक अगर नहीं है, बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कितनी चीजें जो अभी कर रहे हैं सब त्याग करना पड़ेगा, व्यर्थ फोन पे बातें, व्हाट्सएप पे बातें, इंटरनेट पे लगे हुए हैं सुबह से रात तक, बहुत छोड़ना पड़ेगा। वो जो कौन है, सिद्धू, वो जो वर्ल्ड चैंपियन, उसने अपने इंटरव्यू में लिखा, 8 मास तक आई वॉज विदाउट मोबाइल। जो ट्रेनिंग हुई उसकी, 8 महीने तक बिल्कुल मोबाइल नहीं, किसी से बात नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। संसार में भी परफेक्शन के लिए त्याग चाहिए, त्याग तो कहीं मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है ऑन द प्लेटर, थाली पर सब कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष। तो कुछ भी मिक्स नहीं करना, तो ये सबको काम करना है। करेंगे एक साल में? कब से चालू करेंगे? कल से चालू, परसों से चालू करना, ठीक है? उसके लिए सॉफ्ट कॉपी सारी मोबाइल में अवेलेबल है, इंटरनेट पे सारी मिल जाएगी, पर हार्ड कॉपी अगर रहे तो बहुत अच्छा। रोज एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना है, किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए। बेचैन हो कि आज अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ी, कोई भी अव्यक्ति, 69 से चालू करो या कहीं से भी चालू करो, 80 से चालू करो, 70 से चालू करो, पर पढ़ना जरूर है, क्योंकि एडमिशन लेट लिए। स्कूल जनवरी में चालू हुई है, हमने एडमिशन अप्रैल में ली है, और फिर बाद में बोलेंगे ये तो हमने पता ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस क्यों? तुमने पढ़ा क्यों नहीं 5 महीने का? स्कूल 69 से अव्यक्त मुरलिया चालू हो गई, हमने एडमिशन कब ली? अभी अभी। तो कितना टेंशन आना चाहिए थोड़ी, स्पिरिचुअल टेंशन, टेंशन चाहिए थोड़ा सा, उसके जो पढ़ता नहीं व्यक्ति, एग्जाम 2 महीने के बाद है, पढ़ता है कोई आज से? बिल्कुल नहीं। कब पढ़ना चालू करता है? 15 दिन के पहले। 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, सब अपना फेवरेट सब छोड़ देता है। चौथा, कोई चीजें दूसरी साथ साथ जो कर रहे हैं उसके साथ, कभी ये भी कर रहे हैं, कभी उधर भी चले जाते, कभी ये है कभी उधर का भी खा लेते हैं, चॉकलेट, मशीन मेड आइसक्रीम, मशीन मेड चलता है, मशीन अपने आप काम करती है क्या? एक भाई, एक कुमार आबू तक आ रहा था ट्रेन से, तो जिस कंपार्टमेंट में बैठा 3-4 लोग आके बैठे और उन्होंने कहा आप भी हमारे साथ खाना खाओ ना, उसने कहा नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा घर का है, हमारी माँ ने बनाया, बाहर का थोड़ी है। फिर उसने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तो वो 3-4 बाहर के लोग थे, खाना खा रहे थे और फिर खाना पूरा किया तो ये तो एकदम पक्का कुमार था, ब्रह्मा कुमार। फिर उसको कहा अरे तुमने खाना नहीं खा, कम से कम बिस्किट तो खा लो। तो बिस्किट देके मशीन मेड, बाबा ने तो कुछ कहा नहीं तो खा सकते हैं। तो बाबा की याद ने अशरीरी अवस्था और बिस्किट खा लिए और जब आंख खुली वो अजमेर में था, सारा सामान गायब। तो अब सामान गायब, कुछ तो मिला दिया था उसके बिस्किट में वो लोगों ने। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, इसलिए श्रीमद श्रीमद एक बिस्किट और एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे या मर जाएंगे? लोग खाने से ज्यादा मरते हैं या कम खाने से? किससे मर रहे ज्यादा? खाने से ज्यादा मरते, कम खाने से कम। पांचवी महफिल, संगठन, ग्रुप बनाना है। अगर 2-3 लोग एक साथ रहते हैं तो अव्यक्त मुरली स्टडी का ग्रुप बनाओ, आपस में रात को सोने से पहले मिलना, मुरली डिस्कस करना और उसके बाद ही सोना, ठीक है? तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। अच्छा ऑप्शन।